الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین و حضرات، رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، یہ ایک کمانے کا سیزن تھا، اور اپنے تربیت کے لیے ایک پورا ایک نظام تھا. اس وجہ سے جنہوں نے بھی اس سے نفع کمانا چاہا، نفع کما لیا. جو غفلت کے شکار ہو گئے، ظاہر وہ اس برکت سے محروم ہو گئے. البتہ جب تک انسان کے سانس میں، جان میں جان ہے، اس وقت تک توبہ کرنے کی اظہار امید ہوتی ہے، اور توبہ کیا جا سکتا ہے، اور انسان اپنی تربیت کے لیے کوشش کر سکتا ہے. البتہ طریقے مختلف ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، کچھ مشکل ہوتے ہیں. رمضان شریف ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور باقی طریقے اس کے مقابلے میں مشکل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ناممکن والی بات اس میں بھی نہیں ہے. اس وجہ سے جو کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ اب بھی کر سکتے ہیں. البتہ ایک بات عرض کروں کہ جنہوں نے رمضان میں کمایا، اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ان کو کچھ محنت کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اللہ جل شانہ سے یہ بات پکی کر لی ہے اللہ کے ساتھ، کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، اور تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، مگر وہ چند تیرے چنے ہوئے لوگوں کے وہ میرے داؤ سے بچ جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو گئی بات، جو تیری جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بھی ساتھ فرمایا، جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری بات مانیں گے تو تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا. اب یہ بات شیطان اور اللہ کے درمیان طے ہو چکی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اسباب کے چونکہ جگہ پر ہیں، دار الاسباب میں ہیں، دار الابتلاء میں. دار الابتلاء اس لحاظ سے ہے کہ ہم مکلف ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا. یہ دار الابتلاء ہے، آزمائش ہے. جیسے کوئی شخص ایگزامینیشن ہال سے باہر ہے تو بالکل مطمئن ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ ہاں جی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ مزے کر رہا ہے، کبھی جوس پی رہا ہے، کبھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے. لیکن جو ایگزامینیشن ہال میں ہے تو کیا یہ کام یہ کر سکتے ہو؟ وہ نہیں کر سکتا. وہ دار الابتلاء میں ہے، یعنی وہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ اس کے پاس جو 3 گھنٹے ہے، اس 3 گھنٹے کے اندر اس نے اپنا کچھ دینا ہے، اسی کے اوپر اس کا نتیجہ ہوگا. اس وجہ سے وہ نہ گپ شپ لگا سکتے ہیں، نہ جوس پی سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، وہ اپنا قلم روک بھی نہیں سکتا. ہاں جی، کیوں؟ ظاہر ہے مطلب اس کے پاس ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ قیمت ہی ہے، جبکہ باہر والا اطمینان سے. تو اب یہ بات ہے کہ اطمینان سے جو ہیں، کیا اس کے امتحان میں کامیابی ہوگی؟ وہ جو باہر اطمینان سے، ان کو تو اس امتحان میں کامیابی نہیں، کیوں؟ اس امتحان دے ہی نہیں رہے. لیکن جو پریشان ہے، ان کے لیے کامیابی بھی ہے، ناکامیابی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اس وجہ سے یہ دار الابتلاء ہے، اس میں کنفرم، یہ کنفرم بات ہے کہ دار الابتلاء ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دار الاسباب بھی ہے. اللہ جل شانہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، ان اسباب کو استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. مولانا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، افسوس اللہ کے قوانین بڑے اٹل ہیں اور ہم بہت غافل ہیں. میرے خیال میں دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. مثلا آگ کے اندر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو بالکل یقین کرے گا کہ جل جائے گا. کوئی گہرے پانی کے اندر چھلانگ لگائے گا اور دیر نہ نہیں جانے گا تو ڈوب جائے گا. بھلے اس میں دو باتیں نہیں ہیں، بالکل زہر کوئی کھائے گا تو مر جائے گا. یعنی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ جو کسی کو سمجھ نہ آتی ہو، سمجھ میں آنے والی چیز ہے بالکل آسانی کے ساتھ. اسی کو اسباب کہتے ہیں. اب جیسے یہ دار الاسباب دنیا کے لیے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز کا اجر مل رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اس کو نہیں مل رہا. جو نماز کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو نماز کو مانتا ہے لیکن نہیں پڑھتا گناہگار ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ماشاء اللہ گناہگار بھی نہیں ہے. دار الاسباب ہے، اس میں ہر بات پہلے سے طے شدہ ہے. لہٰذا ہمارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے، باقی نتیجہ ممتحن کے اوپر ہے. بعض دفعہ گریس مانگ دیتے ہیں، مفت میں پاس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی زبردستی کر سکتا ہے کہ مجھے گریس مانگ دے دو؟ وہ ضروری تو نہیں ہے، وہ کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. نہیں دیتا کوئی بھی اس سے نہیں پوچھ سکتا، دیتا ہے تو کوئی بھی اس سے نہیں پوچھ سکتا. وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ یہ اس کے ثواب دید پر ہے. تب یہ جو بات ہے کہ اگر اللہ پاک بعد میں فضل فرما دے اور مفت میں معاف کر دے، یہ بھی اس کا کام ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ناممکن بات نہیں ہے. لیکن حساب کر لے پھر بھی اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ فلاں کے ساتھ حساب کیا نہیں کیا، میرے ساتھ حساب کیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ اس کا کام ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص کس چیز کا ہے، یہ حال ہے، وہ مطلب اس چیز کو جانتا ہے. ہاں جی، تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو مطلب اس وقت دنیا کے کاموں کا ڈھانچہ ہے، وہ سارے کا سارا اسباب پر منحصر ہے ہمارے لیے. باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں جی، اب جس طرح دنیا میں بھی بعض لوگوں کو مفت میں مل جاتا ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کوئی چیز خرید لی، مثال کے طور پر 1000 ٹن اس نے کوئی جنس خریدا، اگلے دن اس کی قیمت ڈبل ہو گئی، اس کو سارے کا سارا نفع ہو گیا. اب کوئی اس کی صحیح حساب کر سکتا کہ تمہیں کتنا نفع کیوں ہوا؟ یا بازاروں سے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے لوگوں نے اس قیمت کو کیوں بڑھا دی؟ مطلب جانا مطلب اس کو ایک نفع ہو گیا، کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. بس ٹھیک ہے، ایک فیکٹ ہے، ہوتا ہے. میں نہیں، اس طریقے سے اگر قیمت آدھی رہ جائے، نقصان ہو جائے، اس پر بھی آدمی کسی سے نہیں پوچھ سکتا. بس ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا، یہ بھی بات ہوتی ہے. تو بازار میں بھی یہی قانون ہوتا ہے کہ دار الاسباب ہے، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی نقصان آپ کو نہ ہو، لیکن نقصان اگر ہونا ہو تو ہو جائے گا، اور اگر آپ کو مفت میں فائدہ ہونا ہو تو وہ بھی ہو جائے گا. دونوں باتیں ممکن ہیں، لیکن کیا مفت میں فائدے کی بنیاد پر کوئی محنت چھوڑتا ہے؟ اور مطلب نقصان ہونے کے ڈر سے کوئی کاروبار چھوڑتا ہے؟ مطلب ساری باتیں تو شدہ باتیں ہیں. اس وجہ سے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام دار الاسباب کے لحاظ سے تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے جو بھی ہمارے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ، اللہ پاک کسی کے ساتھ اس کے ظرف سے زیادہ معاملہ نہیں فرماتے، جو وہ کر سکتا ہے اسی کا معاملہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ سریع الحساب ہے، یعنی وہ سیکنڈ میں نہیں لگاتا وہ تمام چیزوں میں. ہاں، اس کو پتہ ہے تو کہ مطلب یعنی کہ یہ کون کتنے پانی میں ہے. لہذا اس وجہ سے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے ہونی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام تو اس طرح ہونا تھا اور اس طرح نہیں ہوا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو جب یہ ساری باتیں کہ ہم مان لیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے نمبر ایک، نمبر دو دنیا دار الابتلاء ہے نمبر دو، پھر ہم اپنا طریقہ طے کر لینا، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں. تو اسباب ہونے کے، دار الاسباب ہونے کے لحاظ سے ہم اسباب کو سیکھیں، اور دار الابتلاء ہونے کی وجہ سے ہم لوگ غافل نہ ہوں، غافل نہ ہوں. اسباب ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے، نتیجہ خدا پر چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف والا ہے اور بہت ہی زیادہ دینے والا ہے، ہم جتنا کریں گے اس سے زیادہ دیں گے، لیکن ہمارا اس کے اوپر کوئی زور نہیں، جیسے وہ چاہے گا وہ کرے گا، فعال لما يريد ہے. ہاں جی، ہم لوگ یہاں پر ایک معمولی کاروبار کا جو مالک ہوتا ہے اس کی ان تمام چیزیں ان کے مالک مان، اس مالک کے مانتے ہیں، کیا وہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. ہاں جی، تو اللہ جل شانہ تمام چیزوں کے جو خالق ہے ان کے ساتھ بھی حساب کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم تو بس ظاہر مطلب ہے ہم تو بندے ہیں، بندے بندے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ ان تمام چیزوں کو اگر مان لیں، جان لیں، اس کے مطابق کام کرنے کی ٹان لیں، تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے. और अगर ऐसा नहीं तो फिर नुकसान, ये जिम्मेदारी भी हमारी अपनी है अगर नुकसान हो जाए। अब क्या बात है, हमने क्या मतलब असबाब के बारे में क्या जानना है? असबाब के बारे में मैं आपसे बात अर्ज करूं, रमज़ान शरीफ का महीना गुजर गया, रमज़ान शरीफ के महीने में तरबियत हो रही थी मास लेवल पर, यानी एक दो अफराद की नहीं, सब की तरबियत हो रही थी, पूरा एक निज़ाम तरबियत का था, उसमें छोटे की भी हो रही थी, बड़े की भी हो रही थी, पीर साहब की भी हो रही, मुरीद साहब की भी हो रही थी, हाँ जी, और आलिम की भी हो रही थी, जाहिल की भी हो रही थी, सब की तरबियत हो रही थी, और हर एक की तरबियत के अपने अपने तरीके थे, माहौल बिल्कुल उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा था। अच्छा, अब जिसने उस वक़्त के तरीकों को जान लिया था और उसी के मुताबिक उन्होंने एक काम कर लिया, उसको उनका फ़ायदा हो गया। मसलन जो शख्स 10 रात मुसलसल जागा रहा और उन्होंने मेहनत और की और आमाल किए इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएंगे ईमान की हालत में, तो इस पे वादा था, और अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ नहीं फरमाते, उस पर वादा था। अब ये जो बात है, मतलब ये है कि जो हम मुसलसल चीख रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये रातें बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है, इसमें जागने वागने को बातें छोड़ो, नहीं वो सोने की बातें छोड़ो, आपसे हम खुद भी जागते, दूसरों को भी जगाते थे, ये सारी बातें जो है मतलब ये हो रही थी, क्यों कर रही, अच्छा उधर जा रही, आवाज़ नहीं जा रही, हाँ जी, अच्छा अभी तेज कर लें, चलो आवाज़ तेज कर लें, पता चल जाएगा, अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चल ठीक, बिस्मिल्लाह। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि ये उस वक़्त हम ये बातें कर रहे थे, लेकिन दौर गुजर गया, जो होना था वो हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद जो काम है वो जब हम बताएंगे और वो सही हो, अगर ज़ाहिर है अल्लाह पाक से हम मांगे कि हम सही बात कर लें, लेकिन अगर वो सही बात हो तो फिर उसमें जो सिस्ती करेगा वो भी इसका जिम्मेदार होगा अपने तौर से, मतलब जाहिर बात तो अभी क्यामत तक चलती रहेगी ना, और कम से कम मौत तक तो हर एक शख्स की बात चलती है, तो ये बात तो चलेगी, जो हक होगा वो हक होगा, जो बातल होगा वो बातल होगा, जो सही बात होगी सही बात होगी, जो गलत बात होगी गलत बात होगी, तो अब ये बात तो चल रही है ना। तो अब मैं अर्ज कर सकता हूँ कि जो कुछ किसी ने कमाया नंबर एक उसको ज़ाया ना करे, उसको ज़ाया ना करे, क्यों, वजह क्या है, शैतान ने जो कहा था मैं दाएं से आऊँगा बाएं से आऊँगा आगे से आऊँगा पीछे से आऊँगा, इनको तुझ तक नहीं पहुँचने दूंगा, तू इनमें बहुत कम को शुक्र गुजार पाएगा, हाँ मगर तेरे चंद चुने हुए लोग इन पर मेरा दाव नहीं चलेगा, ये बात उसने की थी। तो क्या वो अपने बात से पीछे हो गया, अपने बात से पीछे तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है फॉर्मेट चेंज हो गया, रोजे का फॉर्मेट उसका यह था कि वो जारे उसने जो नफ्स के ऊपर मेहनत की थी वो कर ली थी, अब वो चाबी उसने भर ली थी और उस नफ्स ने जो कमाल दिखाना था वो कमाल दिखा दिया, उसके फॉर्मेट यही था, अब इसके बाद खुद मौजूद है, अब ये खुद मौजूद है, खुद जो मतलब बदले चुकाना चाहता होगा तो चुकाएगा। तो ये ईद का जो मौका होता है, मैं पहले ईद के नमाज के बयान में ही बात कर चुका था कि एक होते रूहानी खुशी होती है, जिस्मानी खुशी, रूहानी खुशी देरपा होती है, रूहानी खुशी देरपा होती है लेकिन अंजाम के साथ होती है, बाद में आती है, और जो जिस्मानी खुशी होती है वक्ती होती है और बाद में इंसान उस पर पशेमान होता है, ये बातें चलती है। अब उसमें यह कि जो फौरी इंसान चाहता है, फौरी इंसान चाहता है, उसमें इंसान उस वक्त तो मज़ा उठा लेते बाद में मुसीबत उठाते हैं, वैसे शुगर का बीमार मीठा खाएगा तो उस वक्त तो मज़ा आएगा उसको, उस वक्त तो उसको मज़ा आएगा, लेकिन बाद में जो उसको तकलीफ होंगी तो वो तकालीफ का जिम्मेदार खुद ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसको कहा होगा कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, उस दिल दूरस, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, इंसान मतलब इस तरह कहता है कि बाद में जो मसला होता है वो मसला होता है, उसके साथ पर जो मसाइल होते हैं वो मसाइल होते हैं। तो बहनी इसी तरीके से ये जो इंसान है, ईद की जो खुशी होती है, एक उसकी जिस्मानी या आर्जी खुशी होती है। हम जाते हैं रास्ते में, रास्ते पे जा रहे थे, हमने देखा कि एक शेजोर या डेटसर जो भी है तो वो खड़ा था, उसे चंद लोग वो नाचने लगे बिना वजह, कोई जगह भी नहीं थी नाचने की, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, आज वो नाचने लगे। हमने कहा कमारे भाई, पता नहीं किसके सामने नाच रहे हो, क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तुझे भाई ये बात तो मुमकिन है कि आप किसी वक्त उठते, आपका दिल चाहे कि मैं नफली नमाज पढ़ूँ, आपने नफली नमाज पढ़ ली, उसके लिए तो कोई वक्त नहीं है, चलो आप जिस वक्त भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, लेकिन ये क्या है, बस उधर जाओ नाचना शुरू कर लिया, क्या बात है। हाँ, तो अब ये जो बात मैं अर्ज करता हूँ, कहते हैं हर एक शख्स अपना बर्तन साथ लेके जा रहा है, तो उनके बर्तन में जो कुछ होता है वो होता है। अब उनके अंदर जो चीज़ थी वो यही थी कि वो नाचना चाहते थे, उसने बस वो जगह अपनी जैसे मतलब उनको मतलब नजर आई कि भाई हमने हम नाच सकते थे, और तरह के नाचने लगे। अब ये नाचने का उसकी खुशी कितनी होगी, बस शायद ज्यादा नाचने के दौरान जितनी होगी, उसके बाद फिर क्या होगा। इसके मुकाबले में अगर ये लोग जिक्र करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये है तराना ईद का, अगर ये लोग करते, उसकी वजह से उनको जो रूहानी खुशी होती, उस रूहानी खुशी की बात ही और है। असल में उस रूहानी खुशियों का मिजाज ही नहीं रहा ना, लिहाजा उसका पता नहीं चलता। पता तो जब चले, जब जो कोई चीज़ उसको ट्राई कर ले और फिर देखे कि इसका क्या मज़ा है। मैं आपको जैसे वाकयात सुना चुका हूँ कि एक साहब थे हमारे हॉस्टल में थे, और वो हॉस्टल में बड़े ही फहाश किस्म के गाने लगाते थे अपने टेप रिकॉर्डर पर, सब लोग उससे तंग थे, लेकिन वो माइल बजंग होते थे हर वक्त। अब इस वजह से कोई अपने वो हराम नहीं कर सकता था कि भाई उसके साथ उलझ पड़े, तो एक किस्म का मतलब लोगों ने मतलब जो है उसको बर्दाश्त कर लिया था। अब हम गश कर रहे थे, गश में मैं ही मुतकल्लम था, मैंने बात कर ली, मैंने कहा जी मस्जिद में आप तशरीफ लाए, दीन की बात होगी। तो उसने मुझे साफ इन अल्फाज में कहा, माई हार्ट डज नॉट वॉन्ट टू गो टू मास्क, बिल्कुल इसमें दरमियान की कोई और बात नहीं है। हाँ जी, मैं पता नहीं क्या बात करने वाले थे कि पीछे से डॉक्टर साहब तशरीफ लाए, डॉक्टर फिदा साहब, उसने मुझे इशारा किया आप आगे जाए, उसको मैं संभाल लेता हूँ। हाँ जी, खैर मैं तो आगे चला गया, डॉक्टर साहब पीछे, पता नहीं उसने उसके साथ कौन सी बात की, क्या तरीका अख्तियार किया, लेकिन बहरहाल हम तो आगे चले गए, हमें तो पता नहीं चला। बाद में जब बयान हो लेगा डॉक्टर साहब का, तो मैंने देखा कि बाएं तरफ वही लड़का बैठा हुआ है। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की कोशिश कामयाब हो गई है, और वो आ गया है। जिस वक्त बयान ख़त्म हो गया तो उसी लड़के के अल्फाज है कि मेरा दिल आज बहुत खुश है। किस वक्त बात की है, जब बयान सुन लिया, बैठ किया, मस्जिद में आ गया, तो उस वक्त कहा कि मेरा दिल आज बहुत खुश है। ये फैक्ट है, मतलब ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो किसी को समझ ना आए। है अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह पाक ने फरमाया आगाह हो जाओ दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हो जाता है। लेकिन इस पर यकीन तो करे ना, कोई इस पर अमल तो करे ना, तो फिर अल्लाह ताला ज़ाहिर अपना कुदरत दिखा देता है। तकलीफ है किसको नहीं होती, मुझे बताओ, दुनिया में तकलीफ है किसको नहीं है भाई। दुनिया दारुल इब्तला है, जैसे पहले मैंने किया, में तो ये चीजें तो होंगी, कभी बीमारी होगी, कभी सेहत होगा, कभी परेशानी होगी, कभी फकर होगा, कभी मालदारी होगी, कभी जुल्म होगा, कभी मतलब जो है क्या मतलब क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें दुनिया की चीजें हैं, इसमें तो होंगी ये चीजें तो है। लेकिन जो जिक्र करने वाला है, जो अल्लाह के साथ ताल्लुक वाला है, उसका बिहेवियर उसमें देखो, और जो जिक्र नहीं करने वाला है, उन चीज़ों से गाफिल है, उसका बिहेवियर उसमें देखो, बिल्कुल साफ पता चल जाएगा वो दोनों क्या परफॉर्म करते, मतलब हालात एक जैसे, हालात एक जैसे, लेकिन हर एक का طریقہ کار بالکل اس میں مختلف ہوتے ہیں. یعنی حضرت مجاہد ثانی رحمۃ اللہ علیہ گوالیار میں قید ہو گئے, تو انہوں نے اپنے مریدوں کو جو خط لکھے ہیں اس پر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے لکھے ہیں, اور مریدوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو اتنی بڑی عظیم چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, اس کو بغیر تو یہ مل نہیں سکتی تھی, اس پر خوشی ادا کرنا مطلب خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا کہ ان چیزوں کو اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا یہاں اس دنیا میں, ہمیں تو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا, ہم تو اپنی چیزوں میں گرفتار تھے, اب پتہ چلے کہ اصل چیز کیا ہے. ہم دیکھو کس چیز کو کہہ رہے ہیں, قید و بند کو کہہ رہے ہیں, جو بظاہر تکلیف کی چیز ہے, بظاہر تکلیف کی چیز ہے لیکن اس کے اندر مزے لے رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز میں بھی تنگ ہوتا ہے, تو اب ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی مطلب وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا, تو اس لحاظ سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. کوئی بتانے والا ہو, کوئی سمجھانے والا ہو, کوئی آگے بڑھانے والا ہو, ہاں جی کوئی تسلی دینے والا ہو, ہاں جی کوئی غلط بات سے روکنے والا ہو, کوئی ایسا شخص ہو جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ میرے بھلے کا سوچ رہا ہے. اس دنیا کے اندر یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اس دنیا میں ہر شخص جو مشورہ دے رہا ہے وہ اپنی نفس کے مطابق مشورہ دے رہا ہے, اپنے نفس سے ماورا مشورہ دینے والے تو بہت تھوڑے ہیں. اگر اس دنیا میں مل جائے تو اور کیا چاہیے. ظاہر اس وقت صورتحال یہی ہے نا کہ نفس کے مطابق مشورہ دینے والے تو بہت ہیں. اور میں مکان بنا رہا تھا تو ظاہر مکان تھوڑا سا گلی سے اوپر بنایا جاتا ہے, پھر گلی کی فلنگ ہوتی ہے جب نیا سر سے گلی بنتی ہے. ایک صاحب آیا کہ جی بھائی آپ کو تو گلی کی فلنگ کرنی ہوگی نا, تو بڑی اچھی مٹی ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے, تو اگر میں ان سے بات کروں تو آپ مجھ سے لے لیں گے, یہ اچھا موقع ہے. خیر میں نے تو ان کی بات سن لی کیونکہ میں نے تو کرنا تو تھا, تو آگے بڑھ گیا تو مجھے وہ معمار ہے نا جو مجھے پتہ ہے آپ کو یہ مشورہ کیوں دے رہا ہے, میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ, کہتے آگے اس کا اپنا مکان ہے وہ اس کے لیے راستہ بنا رہا ہے. بات غلط نہیں کر رہا تھا, بات غلط نہیں کر رہا تھا, لیکن نیت میرے لیے نہیں تھی اپنے لیے تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, نیت میرے لیے نہیں تھی اپنے لیے تھی. اگر اس کا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی مجھے مشورہ نہ دیتا, بلکہ پوچھتا بھی نہ, بات بھی نہ کرتا. تو اس طرح نفس کے لیے مشورہ دینے والے تو بہت ملیں گے آپ کو, لیکن اللہ کے لیے صحیح مشورہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی جگہ عطا فرما دے اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اس دنیا میں نایاب چیزوں میں سے ایک چیز ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو اسی لیے فرمایا نا کہ اس کو پھر سرخ گندک سے بھی زیادہ اس وقت بڑی قیمتی چیز تھی, کبریت احمر اس کو کہتے ہیں, کبریت احمر, یہ کبریت احمر سے بھی زیادہ اس کو سمجھو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب فرما دے. اصل بات یہی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ عید ہے, عید گزر گئی, عید کے بعد کی جو زندگی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیسے گزارنی ہے. اس میں تو دو بات نہیں ہے کہ شریعت پر چلنا ہے, مطلب اس میں تو ظاہر کوئی نئی ڈسکوری تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ہائی فائی بات بتا دوں گا کہ ایسا کرو ایسا کرو, بات بالکل وہی سادہ ہے کہ شریعت پر چلنا ہے. ہاں یہ بات ہو سکے کہ شریعت پر چلنے میں آسانی کس طرح ہے, آج کی بات بتا دوں آپ کو. مجھے لاہور سے ایک میسج آتا ہے, ایک بچہ ہے نوجوان ہے, اس کو میں نے مشورہ دیا کہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرو, کچھ مسائل تھے اس کے, تو مجھے اس نے میسج کر لیا آج کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرے, وہ تو انسان چھوڑے, لیکن اس کے لیے آپ مجھے کون سا وظیفہ دیں گے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. تو میں نے کہا آپ سر چونکہ گہری باتیں ہیں, یہ مطلب ہمارے دماغ کے اندر یہ اندر تک اتری ہوئی باتیں ہیں, مطلب یہ اس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا, تو اس کے لیے کبھی مثالوں سے کبھی طریقے سے کبھی کس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب کوئی بات بنائیں گے. اب میں اگر اس کو کہتا کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو یہ کوئی میرے لیے مشکل تھا, मैं उसको पता ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल अज़ीम पढ़ लो, ये जो पढ़ लो, जो बहुत सारे मज़ाइफ़ है, लेकिन वो मसला हल ना होता। क्यों हल ना होता? ये बात उसने मुझ पे छोड़नी थी, और जब वो अमल ना करता कहते वजीफे ने काम नहीं किया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई जिसका इरादा ना हो काम करने का, वजीफा उसका क्या हेल्प कर सकता है? बात समझ में आ गई ना? बात वजीफा उसका क्या हेल्प कर सकता है? अब चूंकि हमारे मिजाज ऐसा बन गया कि हम सब कुछ पीर पे छोड़ते हैं, अगर कमजोरी है तो पीर की है, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, तो इस चीज को निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जब तक ये नहीं निकलेगा उस वक्त तक तो उसका जाहिर मसला हल ही नहीं होगा, कीड़ा तो अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा जी, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आप एक जगह जाना चाहते हैं, रास्ते में दो रास्ते आ गए, आपने किसी से पूछ लिया, किसी अच्छे आदमी से पूछ लिया जो समझदार है, वो आपका खैरख्वाह है, उससे पूछ लिया किस रास्ते पे जाऊं। कहते ये दोनों रास्ते उस तरफ ही जाते हैं, लेकिन एक रास्ता महफूज रास्ता, दूसरे तबाही का है, इस पे मज़े बहुत हैं लेकिन आखिर में तबाही है, मतलब मुकम्मल तबाही है, आप पहुंच ही नहीं सकते। बज़ाहिर उधर ही जाता है लेकिन यह कि मुकम्मल तबाही है, आप पहुंच नहीं सकते। तो मुझे बताओ आप उसे कौन सा वजीफा पहुंचेंगे, कि मुझे कौन सा वजीफा दे दो ताकि मैं सही रास्ते पे चले जाऊं? कोई है मतलब पूछेंगे आप? बात समझ में आ रही है ना? उस वक्त कोई वजीफा पूछता है भाई? वजीफा पूछने की बातें है नहीं, ये तो अमल की बात है। रहनुमाई हो गई, अब रहनुमाई से फायदा उठाना आपका काम है, उठाओ ना उठाओ। एक शख्स है उसको रास्ता मालूम है, आपको जो है ना सेफ तरीके से मिले जा रहे हैं, अब आपका काम है उसके पीछे चलना। अब दरमियान में अगर आप भीड़ में आप उसे गुम हो गए तो फिर उसका क्या कसूर है? बस ठीक है फिर लगे रहो। हाँ जी, तो अब उसमें ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत उसूली बात है और आजकल के मसाइल का हल है, कि जो इलाज नफ्स का है उसको आप वजीफों से नहीं करेंगे। जो नफ्स का इलाज है वजीफों से नहीं हुआ करता, दिल का इलाज वजीफों से होता है, नफ्स का इलाज वजीफों से नहीं होता। जैसे लोगों ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो नफ्स है ना लातों का भूत है, ये बातों से नहीं माना करता। आप पूरा कुरान में उसको सुना दे तो उसके नतीजे वही होगा, मैं नहीं मानता, क्या करें? एक थप्पड़ मारे ना उसको, बस फिर फौरन हाँ, ठीक है सुनता हूँ सुनता हूँ, बस ये तरीका है नफ्स का। नफ्स का तरीका बातें का नहीं है, इसके साथ बातें करोगे तो ये बातों में मशगूल कर लेगा और अपना काम करवा देगा। ये वो चीज़ है जिसको हम हमारे मुजद्दद रफ्सानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेइंतहा मोहब्बत के साथ उसको वाज़ेह फरमाया है, कि आप अपने दिल की इसलाह इसलिए करें ताकि आप अपने नफ्स को मनवाना सिखाए, मानना सिखाए, और उसके लिए उसको तैयार कर लें, जिसको कहते हैं सलूक, उस पर उसको चलाएं। और सलूक के अंदर क्या होता है? रियाजत होती है, मशक्क़त होती है, मुजाहदा होता है, किनात होती है, तकवा होता है, ये सारी चीज़ें सलूक की चीज़ें, ये आपने उनसे करवाना है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आप सुन्नत तरीके के मुताबिक अल्लाह अकबर ज़रूर कहें, लेकिन अल्लाह अकबर कहते कहते वो कदम न उठाए तो कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे? अल्लाह अकबर जरूर कहे, इसमें कोई शक नहीं, वो सुन्नत है, उसका सवाब मिलेगा आपको, और जाने मतलब मसनून तरीके पर आप जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप कदम न उठाए, ऊपर न जाए, पहाड़ के ऊपर न चढ़े, तो क्या ख्याल है कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे? बस यही तो बात है। इसी चीज को समझाने के लिए तो हजरत ने इतनी सारी बातें की। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अमल करना है, और अमल ही अमल को आसान करता है। अल्लाह जल्ल शानू का कानून और कायदा यह है, पहले अमल करो फिर आसान करूंगा। हम लोगों का डिमांड यह है कि पहले आसान करो फिर हम अमल करेंगे, किसकी बात चलेगी? बात तो अल्लाह की चलेगी, अमल शुरू कर लो आसान कर देगा। ये जितने भी लोग जिनके लिए आसान है ना हमारे, उनको पहले ये मुश्किल थे, फजेल बिन अयाज रहमतुल्लाह डाकू थे, डाकू थे, डाकू डाके डालता था। लेकिन एक जगह आयत करीमा सुनी, अल्लाह अकबर, क्या अभी भी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया। कोई कुरान पढ़ रहा था उधर ही जिस घर में डाके डाल रहे थे, क्या अभी भी अल्लाह तआला से डरने का वक्त नहीं आया? बस हिल गए, हाँ जी, बस उसी वक्त वापस हो गए। फिर हिसाब किताब करके जिन जिन पे डाके डाले थे उनसे जाके, मतलब जाने जो उनके उन पास था उनको दे दिया, बाकी माफ़ी तलाफी करके साफ सुथरा होके शेख की तलाश करके माशाल्लाह गए। और आजकल औलिया अल्लाह के सरदार हैं, हमारे सिलसिले चिश्त उधर ही से आए हैं, फजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी। तो ज़ाहिर मतलब है कि डाकुओं के सरदार, डाकुओं के सरदारी से औलिया अल्लाह के सरदारी तक। लेकिन बहरहाल तरीका कार तो है ना। अब ये जो उसने कहा कि कुरान में जो आया कि क्या अब भी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया, इस पर अगर वो सिर्फ सर झूमते तो क्या उसका काम हो जाता? हमारा काम यह है कुरान पर सर झूमना। हम लोग कुरान पाक की बात मानते नहीं है, हम सिर्फ सर झूमते हैं और हम कहते हैं वाह जी वाह, कुरान की क्या बात है भाई, वाकईतन कुरान की क्या बात है। वो बात तो है, लेकिन कुरान है किस लिए? कुरान है अमल के लिए ना। अल्लाह पाक ने हमारे तरबियत का पूरा एक निजाम पहले से बिल्ट इन है, बिल्ट इन। कैसे बिल्ट इन है? देखो नमाज, हमारी नमाज, 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 पांच वक्त फर्ज, पांच वक्त फर्ज है, और पांच वक्त एक ही रिहर्सल बार बार कराई जा रही है। लेकिन एक दफा भी लोगों ने नहीं देखा कि क्यों कराई जा रही है। मेरे ख्याल में 99% लोगों को पता नहीं हो कि ये रिहर्सल क्यों कराई जा रही है, क्यों ये मुसलसल एक ही बात हो रही है, मुसलसल एक ही बात चल रही है, क्या बात है। मसलन देखो, हम नमाज में क्या करते हैं? नमाज में पहले ही क्या है, अल्लाह अकबर, जिसको तकबीर तहरीम में कहते हैं, जो ऐसा फर्ज है कि अगर ये आपने नहीं कहा तो आपकी नमाज ही नहीं हुई। और ये तकबीर तहरीम आपको क्या करता है? ये दरमियान में बिल्कुल डिमार्केशन लाइन है, इधर दुनिया है, इधर आखिरत, इधर दुनिया है, इधर अल्लाह है। जैसे आपने कहा अल्लाह अकबर, अब आपने दुनिया को छोड़ दिया, अब आप अल्लाह के पास आ गए। ऐसे अल्लाह के पास आ गए कि अब उधर से आने के लिए आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरक। आप उधर थे ही नहीं, कहां थे आप? अल्लाह के पास थे। कभी इस पर हमने सोचा है? अल्लाह पाक ने पुस्कर पूरा निजाम रखा हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद तकबीर तारीमों के बाद क्या हम करते हैं? सना पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाह बिहम्दिक व तबारक अस्मक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। कभी इस पर हमने गौर किया कि हमने क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह हो, तहमीद और तहलील करने के साथ हम शुरू करते हैं कि अब हम अपने तमाम जो दुनियाई प्रोसीजर से अब अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पाक है और अल्लाह के हमद सना है और अकेले है और सब कुछ उसका है, ये सब उसकी तरफ आ रहे हैं। अब उसके बाद सूरह फातिहा। सूरह फातिहा क्या चीज़ है? अब जरा गौर फरमाए, सूरह फातिहा इतना बड़ा मंशूर है इंसान हमारी ज़िंदगी का, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी का बेस लाइन है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो अपने आप से, अपनी जड़ों से तमाम चीज़ें निकाल लो कि मैं भी कोई काबिल तारीफ़ हूँ या कोई और भी काबिल तारीफ है, सिर्फ अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह पाक की दो सिफतों का, जिसमें इस दुनिया में और उस दुनिया में सब कुछ इन दो सिफतों के जरिए से मिलता है, एक रहमान है, दूसरा रहीम है। इस दुनिया में रहमान की सिफत से मिले, उस दुनिया में रहीम की सिफत से मिलेगा, अर रहमान अर रहीम। फिर इसके बाद मालिक यौमिद्दीन। आपको ये मुलाजिम पेशा लोग जो होते हैं ना, मुलाजिम पेशा लोग, ये जो एक जिस जो किसी का एसीआर लिखता है उसके बारे में बड़े ही ज़्यादा जनो ख्याल रखते हैं ना कि कहीं मेरे एसीआर गलत ना लिखते, मतलब बहुत, क्योंकि सारे उसकी नंबर उसी पे बनते हैं। और कहते हैं फलां किसी के गुड बुक्स में है, तो गुड बुक्स में क्या होता है कि उसने एसीआर में अच्छे नंबर देने आए। तो ये مالک یوم الدین میں اشارہ ہو گیا کہ میرے پاس آنا ہے آخرت میں، میرے پاس آنا ہے اور سارا کچھ میں نے دینا ہے، مالک یوم الدین. اب اس کے بعد جب اس کی خطرے کی گھنٹی بج گئی اور پتہ چل گیا کہ سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اب سرنڈر، کمپلیٹ سرنڈر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کمپلیٹ سرنڈر ہے، عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا. بعض دفعہ مجھے نا، مطلب میرے ایک خالہ تھی ایک پھوپھی تھی، تو دونوں اکٹھے ہو گئے تھے. تو خالہ کے ساتھ میرے پیسوں کا معاملہ تھا، مطلب زائروں کے ساتھ میرے جمع کیے ہوئے تھے. تو میں نے خالہ سے پیسے مانگے تو پھوپھی ناراض ہو گئی. اس نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں مانگے، آپ نے مجھ سے کیوں نہیں مانگے. میں نے پھر بعد میں بڑے مشکل سے اس کو سمجھایا کہ میں نے اس کے پاس پیسے تھے، میں نے اپنے پیسے اس سے مانگے. یعنی اس نے اپنا خفت محسوس کی کہ دیکھو نا، خالہ کو اپنا سمجھا اور مجھے اپنا نہیں سمجھا. یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. ہاں جی، تو اب دیکھو ایاک نستعین، اس پر اللہ پاک ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں جب ہم کسی اور سے مانگتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جب ہم کسی اور سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں کہ میں نہیں تھا، مجھ سے نہیں مانگ سکتے تھے. اور عبادت تو خیر ہے ہی نا، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارا بالکل ترانہ ہے، ہمارا بالکل یعنی بیس لائن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، تو کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر وقت اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ ہمارا مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے، صحیح راستے پہ چلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اگر وہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو فوراً ہم لوگ اس کی طرف، چونکہ مانگنے والی بات کی ہے نا کہ اب مانگو، مجھ سے مانگو، تو پہلے ہم کون سی چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ ہدایت فرما دے. کیونکہ کچھ بھی نہ ہو لیکن ہدایت ہو تو اب کامیاب ہے، سب کچھ ہو ہدایت نہ ہو تو ناکام ہے. ہاں جی، یہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ ہدایت فرما. اب اللہ ہی سمجھاتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے. کمال کی بات ہے، میں نے ابھی تک کوئی اس کا اگزامپل دنیا میں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے سمجھایا گیا ہو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہو کہ دیکھو مانگ رہا ہوں میں، اور مانگنے میں ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا چیز مانگ رہا ہوں اور کیا چیز مانگنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یہ اب دیکھو مانگنے کا صیغہ ہے، لیکن اس میں خبر بھی ہے. اور خبر کیا ہے؟ کہ مانگنا کیا چیز چاہیے، راستہ کن لوگوں کا صحیح ہے، صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے. انعام کن پر کیا گیا ہے؟ یہ بھی قرآن شریف ہی بتاتا ہے، وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے، صدیقین کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، شہداء ان کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، ان کے طریقوں کو سامنے رکھنا ہے، اور صالحین کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، صحبت صالحین اپنانی ہے. کیونکہ ہمارے پاس صالحین ہی ہے زیادہ تر، شہداء کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور صدیقین بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ٹارگیٹ ہمارا صدیقین کا ہے، کیوں؟ نبی تو نہیں بن نہیں سکتے، نبی کا نبوت کا دروازہ تو بند ہے، صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہے. ٹارگیٹ آپ کا یہ ہوگا، اگر صالحین پر بھی رہ گئے تو سبحان اللہ، لہذا صالحین کے ساتھ رہنا ہے. اور ٹارگیٹ ہمارا کیا ہے؟ صدیقین کے ساتھ رہنا، اور ان کے ساتھ رہنے بھی، کونوا مع الصادقین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ پورا نظام ہمیں اللہ پاک دے رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. پھر اس کے بعد خطرہ بھی ہے. خطرہ کن سے؟ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں जो जानते हैं कि हम गलती पर हैं, लेकिन अपने कीने और जिद हसद की वजह से वो अपनी चीज पर डटे हुए जैसे शैतान और जैसे यहूद। जानते हैं यारिफूनो कमा यारिफूनो अबनाहुम, वो ऐसे ही जानते हैं मूसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन फिर भी मुखालिफत। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह गुस्सा है, इनकी हिदायत सलब की गई है, इनकी हिदायत सलब की गई, मसलूब अल हिदायत है। तो इन लोगों के रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं जाना, गैर मगदूबी अलैहिम। और ऐसे लोग जो इन ही लोगों के शिकार हो चुके हैं और अपनी मंजिल खो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, ऐसे लोगों के रास्ते पे भी नहीं, वलद्दालीन इन लोगों के रास्ते। अब मुझे बताओ सूरह फातिहा में क्या सारा कुछ नहीं है? सूरह फातिहा में बिल्कुल हमारी जिंदगी का पूरा मंशूर आ गया, और ये बार बार से कहा जा रहा है, बार बार से कहा जा रहा है, बार बार से कहा जा रहा है। इसका मतलब है कोई बात तो है ना, इसको समझने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अल्लाह अकबर, फिर तो कुरान है और कुरान से हिदायत लेना है। क्यों? आगे आता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। खुदा की कसम ये इल्म इस वक्त आया है, इससे पहले मुझे नहीं मिला था। ये जो अभी बात कर रहा हूं ये इसी वक्त आया है। और वो क्या है? सूरह फातिमा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, उसमें अल्लाह जल्ला शानो ने रिजालुल्लाह की बात की, रिजालुल्लाह के पीछे चलने की बात की। हाँ जी, ताकि रिजालुल्लाह के साथ साथ रहो तो बच जाओ। लेकिन अहकामात कहाँ से लेना है? किताबुल्लाह से लेना है। तो उसके फौरन बाद कुरान की तिलावत है, किरत है, कुरान की तिलावत है। और जैसे कुरान में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। तो अब कुरान जो हिदायत की किताब है उसके फौरन बाद आपको ये पढ़ने के लिए बताएगी, आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो हिदायत मिल जाएगी। आखिर कुरान पाक मेरे जालुल्लाह के बारे में भी तो है ना, सहाबा के बारे में, हदीस शरीफ में है, बेक ते दे तुम एहत दे तुम, जिसके पीछे भी जाओगे तो हिदायत पालोगे, है ना, कुसाबा के बारे में। तो अगर रिजालुल्लाह के बारे में बात, तो किताबुल्लाह के बारे में भी ये बात है, जहां से पढ़ोगे हिदायत पाओगे। हिदायत की किताब है, जहां से पढ़ोगे। अब ये अलग बात है कि हम इसको हिदायत के लिए पढ़ते हैं या वैसे पढ़ते हैं, ये अलग बात है। अगर हम इसको हिदायत का एक जरिए समझ कर पढ़ेंगे तो अल्लाह हिदायत देंगे, इसके जरिए से हिदायत देंगे। किसी ने हजरत मौलाना तानवीर हुसैन से पूछा, हजरत जिक्र की जरिए जिक्र का फायदा क्यों नहीं होता बाज लोगों को? फरमाया इसलिए कि जिक्र की नीयत नहीं करते। पूछा जिक्र की नीयत कौन सी है? फरमाया अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने की नीयत। अब कभी हमने जिक्र में इसकी नीयत की है कि अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल हो? तो जो नीयत करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं नीयत कैसी चीज है। आपका पूरा जिस्म धुल गया बारिश में, आप अभी नमाज से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका वजू हो गया, लेकिन सवाब वजू का नहीं मिलेगा। सवाब वजू का तब मिलेगा जब आप नियत कर लें कि मैं वजू कर रहा हूं। बारिश में नियत कर लो वो जब पानी पड़ रहा है उसको हाथ पर लेकर, वो जन्म मतलब है कि वो तीन दफा चेहरा धो लो, फिर इसके बाद उसी से हाथ धो लो, फिर मसह कर लो, फिर पैर धो लो, उसी तरीके से बारिश में कर लो, आपका वजू हो गया, सवाब भी मिल गया। और अगर आप वैसे बारिश में आपका पूरा जिस्म धुल गया, आपका वजू हो गया, सवाब नहीं मिला। सवाब का ताल्लुक किस चीज के साथ है? नियत के साथ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमल का दारोमदार नियत पर है। लिहाजा अगर मैंने कुरान को हिदायत के लिए पढ़ा, इन आज के दिन के बाद हम कोशिश कर लें कि जिस वक्त हम नमाज पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान पाक की कहीं से भी तिलावत कर ले, उसमें हिदायत की नीयत कर ले, हिदायत की नीयत कर ले कि अल्लाह पाक इसके जरिए से मुझे हिदायत देगा, तो हिदायत मिलेगी, हिदायत मिलेगी। बेशक हम महसूस करें ना करें, बाद चीज़ें गैर महसूस तरीके से मिलती हैं, वो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है जिसके जरिए से मिलती है। जैसे इशराक का वक्त है, इशराक के वक्त के बारे फरमाया ना कि इशराक के लिए जो बैठे होते हैं इशराक की नमाज के लिए, उस वक्त फरिश्तों की तरफ से कुछ खसूसी खुराक लोगों के मुंह में डाला जाता है, जो उस वक्त इसके लिए बैठे होते उनके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इससे क्या होता है, उसकी अपनी एक दुनिया है। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ उनके लिए जो उसके लिए बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से हिदायत मिलेगी, बेशक गैर महसूस तरीके से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर अगर आपने इसकी नियत कर ली है। हाँ जी, फिर मैं कहता हूँ वल्ला वाले में साहब, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बात यह कि मसनून तरीके सबसे अफजल है। मसनून सूरतें इंसान जब पढ़ता है ना, तो उसमें तरीक़ेकार बताया गया है कि फजर की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, इशा में कौन सी पढ़नी चाहिए, जोहर में कौन सी पढ़नी चाहिए, असर में। ये मसनून तरीके किताबों में है मौजूद। अगर मसनून तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें सारी हिकमतें खुद ब खुद आ गई, जो मतलब अल्लाह पाक ने रखी हैं आज, वो खुद ब खुद वो चीज़ें आ जाएंगी हम अगर करेंगे। तो एक तो ये बात, अब इसके बाद हमने ये कर लिया, रकात पूरी हो गई, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद रुकू करना है। रुकू में क्या है? रुकू एक खास तरीका है जो अल्लाह पाक के ताजीम का है, अल्लाह जल्ल शानु के सामने झुकने का है। पानी पानी कर गई कलंदर की एक बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। हाँ जी, मतलब यह कि झुकना किसकी तरफ चाहिए? अल्लाह ही की तरफ चाहिए। तो नमाज में अल्लाह पाक हमें पूरा प्रैक्टिस कराते हैं कि किरत पढ़ने के बाद इतनी अजीम नेमत अल्लाह ने दी, और इतना अजीम कुरान को पढ़ने के बाद क्या है, फौरन अल्लाह के सामने झुको, गोए की रिहर्सल हो जाएगी। अल्लाह अकबर, क्यामत के दिन जब साख की तजल्ली होगी, उसमें जब लोग झुकेंगे अल्लाह की तरफ, उसकी मतलब रिहर्सल हो जाएगी कि मतलब यहाँ अगर हमने झुकना सीखा होगा, वरना वहाँ इस तरह इंसान का जो कमर है वो इसमें वो आ जाएगा, हाँ जी, वो नहीं झुक सकेगा, सख्त हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना रुकू में इंसान मतलब चले जाए। रुकू में क्या है? रुकू में यह है कि सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, अल्लाह की पाकी, अल्लाह पाक की रबूबियत और अल्लाह पाक की अजमत, तीनों चीज़ों को जमा करके जो कैफियत बन सकते रुकू में, वो कैफियत बनाओ। सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, इस तीन सफात है ना, इससे जो मतलूब कैफियत है, एक अजीम शख्स के सामने जो इंतहाई पाक व पारसा हो। हाँ जी, और तेरे साथ तेरा बहुत बड़ा खैर ख्वाह हो, तुझे हर चीज देता हो, उसके सामने कैसे जाएंगे आप? ये इंसान समझ सकता है? तो अल्लाह पाक से ज्यादा कोई पाक नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू के ज्यादा कोई खैर ख्वाह नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू से ज्यादा कोई अजीम नहीं। तो अब इस कैफियत के सामने अल्लाह के सामने झुकना है। एक होता है झुकना है और फिर इसके बाद ये पढ़ना है, एक होता है ये जहन में रखकर झुकना है। समझ में आ गई बात? जहन में रखकर झुकना है और फिर इसके बाद यह पढ़ना है, और वो कैफियत के लिहाज से पढ़ना होगा। और फिर जब इतना अल्लाह पाक ने पहुंचा दिया तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, समी अल्लाह वाले बना, सुन लिया अल्लाह पाक ने, जिसकी तारीफ की वो सुन लिया उसने। आज फिर इसके बाद रब्बना लकल हम्द, हम भी कहते हैं कि ठीक है, जब सुन रहे तो क्या है, रब हमारे तेरे के लिए तो तारीफ है। हाँ, और फिर इसके बाद उससे भी अगले स्टेज में, मोर एडवांस स्टेज, सजदा में जाना है। यानी सजदे में जाने का मतलब क्या है? यानी इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए मिट्टी की तरह कर ले, मिट्टी की तरह करने का मतलब यह कि मैं अल्लाह के लिए वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हूं जो मिट्टी बर्दाश्त कर रही है, जो मिट्टी बर्दाश्त करे मैं वो सब कुछ घर को देने के लिए तैयार हो जाऊं। क्यों? सुभाना रब्बी अल आला, आला वही है, बाकी सब तो पस्त है, आला वही है सुभान। तो तीन सिफात वहां पर भी बताए गए, सुभान, रब और अल्लाह आला, ये तीन सिफात उसके भी हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद हमारी एक रकात पूरी हो गई और ये रकात दोबारा रिपीट होगी। फिर इसके बाद हमारे जो कायदा है ना, कायदा में दरमियान वाला जो कायदा है उसमें तो तशहुद तक है। अब तशहुद में जो पहली चीज है ना, मैं आपको बताऊं क्या बात है। फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मेराज है। ये जो इंसान जितना झुक सकता है अल्लाह के सामने उतनी अल्लाह उसको बढ़ाता है। जितना झुकने में इंसान मुबालिगा कर सकता है, मुबालिगा से मुराद ये है कि जितना इंसान दिल से झुक सकता है, जितना करेगा अल्लाह जल्ल शान उसके मुताबिक उसको बुलंद करेगा। तो ये मेराज है, सलातो मेराज मोमिनीन, नमाज मोमिनीन का मेराज है। इसमें जो अत्तहियात है ये मेराज का वाकये की रिहर्सल है। अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तैबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या चीज़ है? हजरत मौलाना अशरफ साहब फरमाने लगे, हमारी मिसाल मुर्गाबी के बच्चों की तरह है, जो पानी में डुबकी लगा के ना वो ऐसे ही के वैसे रहते हैं, उनको कुछ भी पानी नहीं चपकता। कहते इतनी बड़ी चीज से हम गुजर के आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमने क्या कहा। अत्तहियातुलिल्लाह असल में वो सूरत हाल बताया जा बता रहे हैं, हम अपने आप को समझा रहे हैं कि अल्लाह पाक के पास जब आप मेराज शरीफ के मौके पर गए तो अल्लाह पाक ने पूछा मेरे लिए दुनिया से क्या लाया हो। तो आपसे हमने अर्ज किया अत्तहियातुलिल्लाह वस्सलावातु वत्तैबातु, ये जो जानी इबादत है माली इबादत मैं सारी ये लेके आया हूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की तरफ से ही आ गया। तो अब अल्लाह ताला को तो जवाब नहीं दिया जा सकता वालेकुम अस्सलाम की तरह, तो फिर सलाम अपने ऊपर, क्योंकि अल्लाह तो मोहताज है नहीं, तो हम ही मोहताज है। ये जो हम अल्लाह के लिए करते वापस वापस अपने लिए आता है। अस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाह सालीन, हमारे ऊपर सलाम हो और नेक बंदों के ऊपर, हाँ इबादिल्लाह सालीन। फिर इसके बाद और ये इसमें बात यह है कि अस्सलामु अलैना में गुनाहगार बंदों के साथ कर लिया, इबादिल्लाह सालीन को इलादा बता दिया अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालीन। फिर इसके बाद फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। ये बाकायदा मेराज के वाक्य की रिहर्सल है। ये उन लोग को जवाब भी है जो बास कहते हैं तुम कैसे हाजिर का सीगा नहीं मानते हो, नमाज में तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कैसे हाजिर? उनको बताया खुदा के बंदे तो मेराज के वाक्य की रिहर्सल है, मेराज के वाक्य बताया जा रहा है। ये तो आप अपनी जुबान से उस वाक्य के इकरार कर रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये पुरानी बात को दोहराया जा रहा है। क्यों? नमाज मेराज है, तो इसमें मेराज के वाक्य को रिपीट कर दिया गया ताकि आपको पता चले कि नमाज क्या चीज है। और फिर इसके बाद जब ये बात हो गई ना, अब कबूलियत का वक्त आ गया, कबूलियत का वक्त आ गया। हर नमाज में कबूलियत का वक्त आता है, हर नमाज में कबूलियत का, लेकिन हम लोग चांसेस को मिस करते हैं, चांसेस को मिस करते हैं ना। तो कबूलियत का वक्त है तो अब क्या करें? कबूलियत के लिए सबसे पहली चीज जो है ना वो दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ ऐसी चीज है जो आपको अल्लाह के दरवाजे पे सीधा खड़ा कर देता है, आपकी जोली खुद ही खोल लेता है, और फिर इसके बाद अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। क्यों ऐसा नहीं है? जो दुरूद शरीफ एक बार पढ़ते हैं 10 रहमतें उसकी तरफ नहीं आती, हाँ जी, तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जो हो जाती है। तो जब ये वाली बात है तो दुरूद शरीफ पढ़ लो, और दुरूद भी वो दुरूद चुन ले गया नमाज के लिए जिसको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, जो कि सुभान अल्लाह, जिसमें माशाल्लाह यानी जो चीखे चीखे किताबों से साबित है, और जिसमें आप सल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर सब के हाल वो मतलब उसका जिक्र आ गया है दुरूद इब्राहिमी। तो वो दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया, दुआ पढ़ दुआ करो। अब ये बात है कि हम लोग जब इनफरादी नमाज पढ़े तो एक दुआ पर इक्तफा ना करें, जो भी कुरानी दुआ याद है पढ़ो ना, और अगर सुन्नत है या नफले हैं तो फिर तो इसमें हदीस शरीफ की दुआएं भी पढ़ो, या और अरबी की दुआएं भी पढ़ सकते हो। अगर नफले नफल नमाज अरबी की दुआएं भी पढ़ सकते हो, हाँ जी, तो ये माशाल्लाह पढ़ते रहो। बाहर की दुआ की वो वैसियत नहीं है जो नमाज के अंदर की दुआ की हैसियत है। हम बाहर की दुआ तो जानते हैं लेकिन अंदर की दुआ तो शायद जानते भी नहीं। ये जो है ना, ये जो दुआ है उसको हम नमाज कैसे समझ कर इग्नोर करते हैं, इस पे तो गौर ही नहीं करना। ये तो नमाज है ना, नमाज पे तो गौर नहीं करना, इस पे तो गौर भी नहीं करना कि ये क्या चीज है, हालांकि ये नमाज के अंदर की दुआ है। इस पे आपको बहुत कुर्ब मिलता है नमाज के अंदर। तो ये नमाज आप, माशाल्लाह आपकी नमाज की तकमील हो जाएगी। फिर इसके बाद सुभान अल्लाह, दरवाज़ा अब खुल गया, अब बाहर वापस आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, ये दुआ। तो ये मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी चीजें हमारे पास हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते। हमें कदर करनी चाहिए। अब हमारा काम यह कि जिस तरह नमाज के बारे में तकवीनी तौर पे बात आ गई, वरना मैंने इसको प्लान किया था कि मैं नमाज के बारे में बात करूंगा, कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने आज नमाज के बारे में बात करनी है। आज आज तकवीनी तौर पे आ गया। तो अब इस तकवीनी तौर पर जो अल्लाह की तरफ से आया, इसकी कदर करके हम ये बकिया जिंदगी जो अब इसके बाद आ रही है उसको हम नमाज के मुताबिक कर दें, नमाज के मुताबिक कर दें। तो फिर पहले नमाजों को दुरुस्त कर ले, अपनी सुन्नत के मुताबिक कर ले, और फिर अपनी जिंदगी को नमाज के मुताबिक कर ले। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमार ए तुमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे से नमाज पढ़ते हुए देखो। तो सुन्नत के अतबा नमाज में है, यही सुन्नत के अतबा आम जिंदगी में भी करो तो आपकी जिंदगी नमाज के मुताबिक हो जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि रूह रवा तो सुन्नत है ना, रूह रवा तो सुन्नत है। तो सुन्नत अगर नमाज में आपकी पूरी हो रही है तो आपकी नमाज सही बन रही है, और यही सुन्नत अगर आपकी पूरी जिंदगी में पूरी हो रही है तो आपकी जिंदगी ठीक हो रही है। इसलिए हमारे हजरत मुजाहिद साहब फरमाते हैं कि हम लोग कहते हैं हमारे यहां मुजाहिदे नहीं। भाई क्यों नहीं, सुन्नत से बढ़कर मुजाहिद और क्या है, सुन्नत से बढ़कर मुजाहिद और क्या है, जिसको ये मुजाहिदा नसीब है उसको और क्या क्या चीज चाहिए। हाँ, अगर सुन्नत पे आने के लिए किसी मुजाहिदे की जरूरत है वो कर लो, सुन्नत पे आने के लिए अगर मुजाहिदे की जरूरत है वो जरूर कर लो। मसलन मैं देखो ये भी बहुत अजीम गलती की कोशिश कर रहा हूँ कि दूर हो जाए। मुजाहिदा किसको कहते हैं? मुजाहिदा उसको कहते हैं कि आपका एक शरई काम है, आपके लिए मुश्किल है, आप इसके लिए खसूसी मुजाहिदा करके उस वो काम आपके लिए आसान हो जाए और आप इसको करने के काबिल हो जाए। अब देखो, बदनजरी से बचना फर्ज है और बदनजरी हराम है, हराम से बचना फर्ज है। अब अगर आपको कोई ऐसा मुजाहिदा दिया जाए जिसके मुजाहिदे से आप बदनजरी से बच जाए, तो आप कहेंगे भाई सुन्नत मसनून मुजाहिदा नहीं, भाई खुदा के बंदे फर्ज के लिए ये, इससे आगे एडवांस्ड है जाए, ये तो फर्ज के लिए है। और अगर आप सुन्नत में चाहते तो आप असम के साहबों को ये बात पेश ही नहीं आ रही थी, तो उनको इसकी जरूरत ही नहीं थी, जरूरत तो आपको है। तो उस वक्त तो इस चीज की जरूरत नहीं, तो आप उधर तलाश करेंगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो इससे महरूम हो जाएंगे। भाई आपने हज पे जाना है, हज पे जाना घोड़ों पे था, ऊंटों पे था, पैदल था, साहबा के राम के दौर में। क्या ख्याल है, आप कहते मैंने मसनून तरीके पे हज करना है और मैंने ऊंट पे जाना है, मैंने जहाज पे नहीं जाना, तो लोग आपको क्या कहेंगे? भाई ना आप ऊंटों पर जा सकते हैं, ना आपको ऊंटों पर रास्ता मिलेगा, जाना है तो इस तरीके से जाओ, हज फर्ज है, हज फर्ज है, इसके लिए जो भी रास्ता मिले उस पर जाओ। फिर पासपोर्ट बनाना जरूरी है, पासपोर्ट बनाओ, साहबा के दौर में पासपोर्ट होता था, तो अब पासपोर्ट के बगैर हज नहीं हो सकता। आप कहते साहबा के वक्त में पासपोर्ट नहीं था, मैं हज नहीं करता, कितना सवाब मिलेगा? गुनाह होगा। बस यही चीज समझने की बात होती है ना, यही समझने की बात होती है। तो इस तरह वो मुजाहिदात जिससे आप सुन्नत पे आ जाए, इस पे फर्ज पे आ जाए, वो आपकी जिंदगी का सुभान अल्लाह रोह रवा है। इसके जरिए से आपको जिंदगी माशाल्लाह गुजारना आ जाता है, जो चीजें लाजिम है उन लाजिम को लवाजिमात को पूरा करने की तौफीक हो जाती है। ये मैंने एक दरमियान में जुमले मुतरजा के तौर पे बात अर्ज कर ली, क्योंकि बाज़ लोगों के जहन में आते कि मुझे समय बनाए कि सबसे बड़ा मुजाहिदा तो सुन्नत पे चलना है, लिहाजा हम सुन्नत पे चलते हैं, लिहाजा में किसी और मुजा तो सुन्नत पे चलते हो लेकिन औरतों को घूरते हो, बताओ सवाब मिलता है नुकसान हो रहा है? उसको उससे बचने के लिए क्या किया था आपने? हाँ ये फिर करना पड़ेगा, बचना तो है, लाजिम तो है, सिर्फ सिर्फ सुन्नत नमाज में है, पूरी जिंदगी के अंदर है, उसमें जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वो करना है। हाँ अलबत्ता उस पे आने के लिए कुछ जरूरियात है, कुछ तरीके हैं, ये जो तौर तरीके होते हैं उसको ही तसव्वुफ कहते हैं हम। तसव्वुफ यही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो तौर तरीके जो आपको शरीयत पर लाने के काबिल बनाते हैं, बस वही मतलब वही तसव्वुफ है। वो हर दौर का अपना होता है, क्योंकि हर दौर के हालात अपने होते हैं। जैसे हर दौर में बीमारी अलग होती है तो दवाई भी अलग होती है, इस तरीके से हर दौर के हालात जो कि अपने होते हैं उसके इलाज भी अपने अपने होते हैं। टाइम पूरा हो गया, वरना मजमून बड़ा लंबा है। अल्लाह जल्ल शान हम सबको तौफीक अता फरमा दे इस पर अमल करने के लिए। वाखिर दावा अलहमद रब्बिल आलमीन, अलहमद रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अरिना अल-हक़्क़ अल-हक़्क़ वारज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिना अल-बातिल बातिल वारज़ुक़ना इज्तिनाबा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। रब्बना तक़बबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अत्तवाबुर रहीम।